这个一些
啊，
那你大体的说，उस मूर्ति का दर्शन करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। और उन्होंने फिर से ये नहीं पूछा कि कहाँ पर किस जगह में वो मूर्ति है। और वो चले गए। इन्होंने अपने मंत्रियों को, पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, सबको बुलाया। पता लगाओ, सर हमने ये पूछा नहीं कि नील बाघों की मूर्ति कहाँ है। जहाँ पर कोई जानवर के मरने से ही वो समुद्र पर लेकर के बैठने मिल जाता है, इसे तुम लोग पता लगाओ। उन्होंने चार अच्छे गुणी व्यक्तियों को, बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोगों को भी आभार दिया और चारों दिशाओं में भेज दिया। एक एक महीने के अंदर में पता लगा करके आ जाना। उसमें से इनके पुरोहित का एक लड़का, कोई लोग कहते हैं पुरोहित भी और कोई कहते हैं कि युवक पुरोहित का लड़का, जिसका नाम विद्यापति था, उसको भी उन्होंने कोई उत्तर, कोई पश्चिम, कोई पूरा गया और इसको दक्षिण दिशा में भेज, दक्षिण और पूरब की दिशा। सब लोग चले गए और महीनों तक लोग लौटे नहीं। इसके बाद लौटे तो कोई पता लगा करके नहीं आए। और ये एक महीना से अधिक हो गया और घूमता रहा। राजा को उसकी बड़ी चिंता लगी कि सब लोग तो लौट आए, किंतु ये लौट आए नहीं। और वो एकदम समुद्र के किनारे पूरब और दक्षिण के तरफ में बढ़ता 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 आजकल जहाँ जगन्नाथपुरी है उसी क्षेत्र में गया। उस क्षेत्र का नाम शंख, शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? कि वो शंख के आकार का, आकृति का वो है, बीच में ऊपर, फिर इधर में ऐसा, फिर इधर में ऐसा, जैसा शंख होता है वैसे उसकी स्थिति। भुवनेश्वर से लेकर के ये स्थान पूरी तरह फैला हुआ है। उधर और भी साल्ट लेक, दिल का हर्ष, उधर तक ये चारों तरफ में फैला है। तो वो खोलता 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 समुद्र के किनारे में पहुंचा। वहां पर एक पहाड़ी के निकट पहुंचा। शाम हो गई थी उस समय में। उसने सोचा कि पता तो लगा नहीं, आज इसी गांव में कई बार चल जाऊं और फिर कल पता लगा करके चलूंगा। ओ भक्त, तो तुम घुमाओ ना, सामने घुमाई ले। इसीलिए वो लोगों से पूछा कि हम कहाँ पहुंचा रहे। पहले गांव में जो गांव का सरदार होता था, गांव के जो विशेष व्यक्ति होते थे, उसके यहाँ पर मुखिया के घर पर लोग ठहर जाया करते थे। उन लोगों ने बताया कि हम मुखिया का घर बाकी में है, आप मुखिया के घर में चले जाए। ये वहां पर पहुंचे शाम को, किंतु घर का मालिक नहीं था। उसकी एक लड़की थी, वही लड़की घर में थी। उन्होंने कहा कि तुम मुखिया जी कहाँ है? वो बाहर गए हैं, कब लौटेंगे? आप थोड़ी देर में लौटने ही वाले। उन्होंने कहा कि आज उनको ठहरना है। उन्होंने कहा पिताजी सबको ठहराते हैं, आप ही ठहरिए, उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दी। अब तब तक थोड़ी देर के बाद उसके पिताजी आ गए, बड़े खुशी के साथ में रखा। जब वो आए तो उनके अंगों से सुगंध निकल रहा था, बाहों से सुगंध निकल गई। इनको कुछ संदेह हुआ, संदेह हो गया तो रात में तो आ रहे थे, दिन रात उनकी यही चिंता कि कैसे वो नील माधव ठाकुर जी का पता लगाया जाए। जब उसके अंगों में गंध देखा और कुछ उनको ऐसे भान हुआ कि यहाँ पर हो सकता है कि पता लगे, तो उन्होंने जान बूझ करके उस लड़की को से प्रेम करना आरम्भ कर दिया। बड़े प्रेम के साथ में बोलना चाहना, देखने में बड़े खूबसूरत थे ही, वो लड़की भी बड़ी खूबसूरत थी। वो अभी छोटी उम्र की थी, ये युवावस्था थे, बड़े प्रेम के साथ में बोलने लगे। धीरे 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 वहां से गए नहीं, वहीं पर गए और कुछ दिनों में उनका प्रेम गाढ़ा हो गया। अब जब वो पिताजी चले जाते सगड़े और शाम को लौटते, उसने लड़की से पूछा जैसे तुम ये बतला सकते हो कहाँ गए हैं? इसके पहले उन्होंने ऐसा उससे परिणय कर लिया, प्रेम कर लिया, धीरे 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 उसने कहा कि हम इस लड़के के साथ में शादी कर, और इन्होंने भी अपनी बात दूर पर रखी थी, मेरी शादी हुई है। उसके पिताजी ने जो लड़का दे करके आज देखा, जैसे ये ब्राह्मण का लड़का ही मालूम पड़ता है, और जब भी शादी करना चाहते है कोई बात नहीं, भाग्यवाई रख लेने, बल्कि भाग्यवाई करके और बच्चे के साथ में अपनी लड़की की शादी कर। अब वो लड़के ने कुछ देने के बाद में फिर उनसे प्रस्ताव रखा, जो देखो अपने पिता से पूछो ये कहाँ जाते हैं लोग और उनके शरीर में गंध कैसे आती है, इतनी सुगंध। तो उन्होंने कहा इस समय पूजा करने जाता हूँ, वो उस लड़की ने बतलाया, किंतु ये नहीं बतलाते हैं कि कहाँ पर किस जगह में वो मूर्ति है। उसने लड़की को समझा दिया, देखो तुम मेरी पत्नी हो, अब तुमको हमारे काम में सहायता करनी चाहिए, मैं इसी काम के लिए आया हूँ, और यदि काम नहीं किया तो हमारे प्राण चले जाए, इसलिए तुम हमको किसी प्रकार से ये बतलाओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं। पिताजी से उसने जिद की, मैंने कहा ये मैं किसी को बतला नहीं सकता, तब हाँ यदि हमारा जमाता यदि उसको देखना चाहता है उसे हम दिखला देंगे, और आंख पर पट्टी बांध कर ले जाएंगे, दिखला करके फिर उसको यहाँ पर लौटा करके सब फिर उपस्थित करें, दर्शन कराए। उसने कहा देखी क्या ऐसा ही हो, तो लड़की बड़ी चतुर थी और बरसात का दिन था, उन्होंने सरसों लेकर उसकी चादर में बांध दी और कहा इसको गिराते जाना, और कुछ दिन के बाद बरसा होगी, घर में बरसा खूब होती है, अभी बरसा खूब जोर से एक महीना पहले से ही आरंभ हो गया, स्नान यात्रा के दिन से ही, लेते जाना गिरा देना, और थोड़े दिन में ही इससे बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, पौधा हो जाएगा, अब फिर उसमें फूल आ जाएगा, फिर उस फूलों को देखते जो तुम अकेले से चला जाना, तुमको देख लेंगे। ठीक है, उनको गाड़ी पर बैठा दिया और उनको भी आम में पट्टी बांध दी, और वो अपने साथ में जंगलों को पार करता हुआ पहाड़ी के पास में पहुंचा और गाड़ी को खोल दिया बैलों को, और उनको लेकर के ऊपर ले गया, किधर आया है ये सब पता नहीं, ऊपर जाकर के उन्होंने मंदिर के सामने में उसका ये पट्टी खोल दी, खोलने के बाद में ठाकुर जी का जब दर्शन किया तो भाव भी जोर, ठाकुर जी का नाम ही निर्माधव था, बहुत प्रसन्न हुआ कि आज हमारे जीवन की साध पूरी हुई, अब महाराजा को मैं जाकर के बतलाऊंगा। ऐसा सोच करके ये वही पर दर्शन कर रहे थे, और उधर में वो चला गया पुष्प चयन करने के लिए, और पुष्प चयन करके फिर वो चंदन इत्यादि घीचेगा, कस्तूरी इसमें लगाएगा, और इसके बाद में पूजा पाठ करेगा। तो वो चला गया, कितने ने ये घूम करके देखने लगे किधर से रास्ता है, किधर क्या है, ये सब अच्छी तरह से देखने लगे, और सीनरी देखने लगे, जो भविष्य में आऊंगा तो फिर इस चीजों को देख करके पता लगा लूंगा। देख रहे थे उसमें भी उन्होंने देखा कि आज एक सुंदर तालाब है उस मंदिर के पास, और मंदिर के पास ही में एक पेड़ है, और पेड़ की डाले उस सरोवर तक चली गई है, पानी के बहुत भीतर तक चली गई, भीतर मैंने ऊपर से चली गई, और उसी पर एक कौआ ऊंघ रहा था, और ऊंघते ऊंचे हटा वो डाल से चित होकर के नीचे गिर गया और पानी में वो डूब गया, पानी में डूबने के साथ ही साथ में वो मर गया, मरने से आत्मा निकली, और वो देखा जैसे वो कौआ अपने कौआ का शरीर पड़ा हुआ है पानी के ऊपर में, और वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गरुड़ के पीठ पर बैठ करके चला जा रहा है। अजी ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, तो ये तो राजा को ऐसा ही बतलाया गया था, तो ठीक है मैंने भी प्रमाण देखा, अब मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद ही वैकुंठ लोक में जाऊंगा, अब राजा के पास किस लिए जाऊं। बस पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़ करके उस घर में जा ही रहा था, इसलिए मैं वो आ गया, उनका ससुर ससुर आया, ससुर आ गया, और अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बड़ी मुश्किल से उनको पेड़ से उतारा, उतार करके भीतर ले गया, लेकर के और फिर उनका पूजा इत्यादि किया, किंतु वो जान गया ये पेड़ पर किस लिए चढ़ा, ये जान गया जैसे निर्माता को जान गया है, और उनको कुछ ऐसे संदेह पैदा हुए जिससे कि वो समझ गया कि ये कहीं दूसरे आदमी जगह का व्यक्ति है, वो जाकर के उसको खबर दे देगा और फिर नील माधव पर उन्हीं का कब्जा हो जाएगा। जान करके वो डर गया और सोचा कि इसको बांध करके उस पर और कहीं पुनः उसको बांध करके रख। इसने आकाश बाणी हुई कि इसको तुम छोड़ो मत, इसको छोड़ दो, तुम एक बात करो, इसको जाने दो, इसमें तुम्हारा भी कल्याण होगा और इसका भी कल्याण होगा। ऐसा कर करके उनको छुड़वा दिए। फिर वो अपने उनकी पट्टी बांध करके घर में ले आया। घर मनाने के बाद में अपनी स्त्री से बातचीत कर करके उसको सांत्वना दे करके एक दिन सुबह से वहां से निकल गया, महाराज के पास में पहुंच गया। महाराज सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। अपनी चतुरंगणी सेना, अपनी पत्नी, उन्हीं का नाम था उर्मिता देवी, उनको साथ लेकर के और सब सेनाओं को साथ लेकर के कोर्ट लेकर के खा जाना इत्यादि और वहां से चल दिया। अब हम लोग सब वही पर चल करके निर्माणों की सेवा करेंगे और हमारा सफल होने वाला। जब यहाँ आया तो देखा उस गांव के पास में जब आया तो देखा कि न तो गांव है, न कोई पहाड़ी है, न कोई रास्ता है, सब बालू से जैसे वहां पर जगन्नाथपुर में चक्र पर्वत जैसे ऊंचा, हमारे मठ के सामने भी इतना ऊंचा पहाड़ का टीला वहां पर लगा हुआ है। हमारे ब्रह्मचारी उनसे एक फांसा के बराबर करके ऐसे ही जगन्नाथपुरी में आस पास में बड़े बड़े टीले पहाड़ जैसे सब हो जाते हैं। ये जगन्नाथ जी का भी जो मंदिर है, इसके पहले हजारों बार ऐसा हुआ बालू में एकदम फंस गया, कोई पता ही नहीं चला। फिर बालू को खोदने से हटाने से तब फिर वो मंदिर का जीर्ण भाग प्राप्त। ये पहला मंदिर नहीं है, ये ना जाने कितने बार वहां पर बना है, कितना बार बिगड़ा है, अब फिर बना है। ये अभी अंतिम वाला कितना एक डेढ़ हजार वर्ष का ये होगा। राजा कोई भीम नाम उनका क्या था, वो उसके राजा थे, उनके समय में ये बना है, वो सब लिखा है। इसके बाद में देखा जैसे कहीं पता नहीं है, बड़े दुखी हुए। दुखी होकर के सोचा जैसे पता तो लगा नहीं, इतना सब कुछ लेकर के आए, समुद्र के किनारे समुद्र के तरफ में मुख करके प्रायों को वही क्षण कर गए, खाना पीना छोड़ करके अब मरने के लिए सब त्याग्रह कर। यदि नहीं ठाकुर जी मिले, कोई उद्देश्य नहीं मिलेगा तो हम तो मर जाए। आकाशवाणी में तुम चिंता मत करो, तुम उठो और तुम ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक में जाकर के इनका दर्शन करो और जैसा कहे वैसा करो। इतने में देखा जी ब्रह्मा जी उनको मिल गए, ब्रह्मा जी के साथ में वो वैकुंठ लोक। वहां इन माधव जी का दर्शन करके बड़े संतुष्ट हुए और उनसे प्रार्थना की, प्रभु अब आपके लिए। उन्होंने कहा मैं अब नील माधव में नहीं जाऊंगा, ये तो हम नहीं जाऊंगा, किंतु मैं अब चार रूपों में होकर के वहां पर प्रकट होऊंगा, तुम लौट जाओ जहां से आए। वहां पर एक बंकिम मुहाना समुद्र का भाग है, उसी जगह में जाकर के या चक्रवेद उसको भी कहते हैं, चक्रवेद वहीं पर जाकर के तुम रहना और मैं वहां से एक पेड़ के रूप में आऊंगा, लाल होगा, उस पर चक्र का चिन्ह होगा, बड़ी सुगंध निकलेगी और बहुत कठोर उसका लकड़ी होगा, तुम उसको निकलवा करके और उसी से चार मूर्ति बनाना, हम अपने आप निकल जाएंगे और उसी की तुम वहां पर प्रतिष्ठा करना और प्रतिष्ठा करने के बाद में हमारी पूजा इत्यादि करना। वहां से लौटते आते देखते हैं क्या वो कितने राजा बदल गए हैं, बाई चांस उनकी स्त्री और बच्चे जो लोग थे और पुरोहित इत्यादि वो सब नहीं बदले और बाकी सब का सब फन थ्रो करके परिवर्तन हो गया है। अब आकर के समुद्र के किनारे में बैठ करके और कुछ आराधना कर रहे थे, इतने में वो पेड़ एक लाल बहता हुआ उसकी उसका घर और मोटा वहां पर। राजा ने अपने समस्त सेवकों के साथ में उसको निकालना चाहती तो वो निकले नहीं पानी पर, पानी में से बहुत चेष्टा की, हाथी लगाए गए, सब कुछ लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। अंत में आकाशवाणी या कुछ ऐसी हुई ये ऐसे नहीं निकलेंगे, सुंदर रथ बनाओ और यहाँ ले आओ और हमारी जो पहले जो वंश के लोग पूजा करते थे उन लोगों को ले आओ बुला कर, क्या नाम विश्वावर्ष उनको बुला लाओ और वो जो पुरोहित से का लड़का जो तुम्हारा जो आया था उसको भी बुलाओ और ये लोग आकर के आए और तुम प्रार्थना करो रानी के समय और इन लोगों को लगा दो, इनके स्पर्श मात्र से ही हम रथ पर चढ़ जाएंगे और फिर हमको वहां पर ले जाएंगे। ऐसा ही किया गया, दूसरा वस्तु आए और इधर में ये विद्यापति भी आया, राजा और रानी दोनों हाथ जोड़ करके रथ के सामने से उनको खड़े होकर के उसकी पूजा और प्रार्थना की और ये लोग जमीन स्पर्श किया प्रणाम करके तो अपने आप रथ में चढ़ गए। रथ में चढ़ने के बाद में इनको ले जाया गया वहां पर जहाँ पर की पंडाल बना था और सीमे लगाए गए थे, जहाँ पर की देश विदेश से मिस्त्री लोग वहां पर जुटे थे, कारीगर, कारीगर मैंने ब्राह्मणी कारीगर, मूर्ति को बनाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण, इसलिए जयपुर के जितने भी कारीगर हैं पहले वाले ब्राह्मण थे, अब सब दूसरे दूसरे भी जुट गए हैं किंतु पेशा यह उनके पूर्वज लोग का ब्राह्मण ही, अभी भी जितने भी मूर्ति अच्छे अच्छे कलाकार हैं वो सब ब्राह्मण हैं। तो वो लोग सब एकत्रित हुए थे, महाराज ने कहा जैसे आप लोग भगवान की सुंदर मूर्ति इसमें बनाए, वो लोग अपनी छेनी हथौड़ी और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए और जब उसमें मारते लोहे जैसा उड़ करके चला गया, लोहे से भी अधिक कठिन कुछ नहीं कर सके। अंत में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, बड़ा से व्यक्ति बहुत ही सुंदर, उसके हाथ में उंगलियां ऐसी फिंगर वाला और कुछ अस्त्र शस्त्र लेकर के आया। उसने कहा कि आप आते थे तो मैं बनाते, हम तो यही चाहते थे सर, ठीक है। उन्होंने कहा कि बात करो, बंद घर में मैं बनाऊंगा, यहाँ पर आप घर बना दो और उसमें कोई नहीं रहेगा, अकेले मैं रहूंगा और 21 दिन लगेंगे हमारे बनाने में और हमारा दरवाजा 21 दिन तक नहीं खुलेगा, हमारा सब स्वीकार हो तो मैं जाऊँ। सर ठीक है, जाइए बनाइए अपना अस्त्र लेकर के और वो घर में चला गया, भीतर से दरवाजा बंद कर दिया और 21 दिन में हम बनाएंगे ऐसी संकल्प। राजा रानी एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन हो गए किंतु देखा कि भीतर से कोई शब्द ही नहीं हो रहा है, ठप तो कोई भी शब्द और ये छह दिन तक पानी भी नहीं ले गया, खाना भी नहीं ले गया तो ये तो मर गया होगा, जो निकल नहीं रहा तो ये ब्राह्मण हत्या का एक पाप लगेगा, इसलिए पहले दरवाजा को खुलवाने की चिंता की। राजा ने कहा कि ताकि थोड़ा दिन और देखो, और तो एक दिन देखा किंतु कुछ भी नहीं, इसलिए रानी ने जबरदस्ती कहा कि दरवाजे को खुलवा करके देखा। राजा ने कहा कि तुम्हारी जब इच्छा है तो वैसा ही किया जाए। उन्होंने दरवाजे को खुलवाया और थोड़ा सा जब भीतर गया जमीन दिख गए तो वो जो ब्राह्मण थे कहा कि ये तुमने क्या कर, अभी तो कितने दिन, कितना दिन हुआ, 14 दिन हुआ था तो 14 दिन हुए थे अरे अभी तो इतना दिन बाकी है, मैंने तो अभी पूरा कुछ नहीं किया, ये तो थोड़े से अभी कुछ बनाए तो अब होगा नहीं, तुमने बीच में गड़बड़ कर दिया। अब प्रभु की इच्छा यही है कि तुम यही यहीं तक रहे। अब ऐसे ही इनकी विग्रह की प्रतिष्ठा कर दिया और कुछ बनाई। राजा रानी बड़े दुखी थे, किंतु जो जैसा सुना है वैसा ही वैसा का वैसा रह गया। वो ब्राह्मण और कोई नहीं था, स्वयं जगन्नाथ देव ही थे। तो उसमें से जगन्नाथ देव, बलदेव, सुभद्रा और चक, ये चार उसमें से अधूरे रूप में बने हुए ये सब थे। इसके बाद वो ब्राह्मण का ध्यान हो गया। राजा ने सोचा किसी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, इसलिए आज वहां पर पहले मंदिर बनाया था। मंदिर के संबंध में भी कुछ विवाद खड़ा हुआ। वो मंदिर बना करके इस स्थान पर और गए थे निर्माधव लाने के लिए, किंतु वहां से आए तो कितना दिन हो गया, वो मंदिर बालू में दब गया था। और तब तक एक दूसरा राजा हुआ, उसने कहा बाली को हटा करके कहा कि मैंने मंदिर को बनाया। जब इंद्रदिन लौटे तो दोनों में कुछ विवाद हुआ। इंद्रदिन ने कहा कि ये मेरा मंदिर बनाया हुआ, तुमने इसको रिपेयर करा। और वो कहा था कि नहीं, हमने इसको पूरा बनाया है। तो वहां पर एक कौआ था। कौआ कौन? कहा वो तुम भी अभी भी वो वृक्ष है अक्षर, और वहीं पर वो रामचंद्र जी का लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो उनसे पूछा गया ये मंदिर किसका है, किसका किसने बनाया। तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर इंद्रदुम्न ने बनवाया, और पीछे से इस राजा ने उसको बालू हटवा करके रिपेयर मात्र कराया। वो बहुत लज्जित हुआ और लज्जित होकर के मारखंडे प्रभु है वहीं पर एकदम शहर के दक्षिण उत्तर की तरफ बहुत दूर है वहाँ। तो वहाँ पर वो उधर नहीं चले गए और वहीं पर आने लगे लज्जा के मारे। और इधर में उस मंदिर में ले आएंगे उस मूर्ति को, मूर्ति में इसको ले आएंगे, इसलिए मंदिर को साफ किया जा रहा है। तो अभी जहाँ मंदिर है ना, यहाँ पर मंदिर था, और ये सब जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, जहाँ पर कि वो ठाकुर जी बने हुए थे उन्हीं जगह के पास।
अच्छा, नीलमाधव मंदिर जो अभी है
वही हुआ 45-46 में, अब 50 में क्या अंतर है। तो फिर उस समय में वो मूर्ति को लाया गया और वहाँ पर विग्रह की प्रतिष्ठा हुई। उस समय ठाकुर जी से इन्होंने वर मांगा। ठाकुर जी ने कहा कि वर मांगो। उन्होंने कहा कि वर मैं ये मांगता हूँ कि हमारा वंश न चले। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, अरे तुमने इतना बड़ा विशाल मंदिर बनवाया और वहां पर हमको प्रकाशित किया, और तुम निर्वंश होने के लिए कह रहा कि हमारा वंश होने के लिए, इसका मतलब क्या? इसलिए कि पुत्र भी कभी कुपुत्र हो जाता है। हमारा वंश यदि चलेगा तो कोई कहेगा कि ये ठाकुर जी मेरे हैं, और प्रणामी कितनी आएगी, और जितना इसमें कुछ होगा चढ़ावा चढ़ावा सब वो करेगा, नरक में जाएंगे ये सब। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई ऐसा भी हमारे कुल में पैदा नहीं हो कि ठाकुर जी को अपना मान करके और अपने भोग के लिए उनको बनाए और उनकी पूजा पाठ करें और उनका एक भी कोई चीज हम लोग खाए नहीं तो नरक में जाएंगे, बल्कि चेतन ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। इसलिए हमारा वंश न चले और कोई भी न कहे ये मेरे ठाकुर जी, और इसकी व्यवस्था चलती रहे। इसके लिए राज्यपाल का जितना जो कुछ था सब उसके लिए दे। ठाकुर जी ने कहा जैसे एवं मस्तु ऐसा ही होगा, किंतु एक बात होगी। और उन्होंने कहा राजा ने जो वह ठाकुर जी ने ही चाहता जो हमारी पहले पूजा करता था, क्या ना बिस्ता बसु, और उसके वंश में जो लोग होंगे वो लोग बरस में 9 दिन 1 महीना हाँ स्नान यात्रा से लेकर और रथ आने तक 1 महीना इनकी पूजा रहेगी। ये लोग जैसा बनाएंगे वैसा ही ये सब खाएंगे पिएंगे और सेवा, और इनका नाम होगा कैसा, माने भगवान के जैसे। उस समय ये सुद्रतो है, पुलिंदी है, ये सब कोई नहीं कहेगा, इन्हीं का अधिकार होगा और इनका ऐसा अधिकार नहीं है ठाकुर जी को गाली नहीं देनी, जो कुछ भी करेंगे साले इत्यादि जितना जगत में गाली है सब उनको देते हैं। और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होकर के, माने ये गोपियों का भाव है इनका, और इनके जो बेटे हैं होंगे और वंश वाले विद्यापति के, ये ठाकुर जी की पूजा करेंगे वंश प्रमुख। और उपकार कौन होगा विद्यापति की, जो दो पत्नियां हैं ब्राह्मण वाली
विद्यापति की लड़की,
विद्यापति की एक है विद्या विद्यापति की लड़की और एक पहले वाली ब्राह्मण ब्राह्मण वाले लड़के जिसने वो पूजा करेंगे, और ये पुलिंदी वाले भी जो लड़के होंगे संतान ये लोग रसोई उपकार होंगे उनकी रसोई बनाएंगे। रसोई बनाने वाला भी ब्राह्मण होता है और पुजारी भी होता है। अब उसकी दोनों पत्नियों के लड़के ब्राह्मण ही कहलाते हैं, किंतु एक रसोई कार बनाने वाले हुए और एक हुए इस तरह से उनका सब विभाग इत्यादि कर करके और उसकी सेवा सदा के लिए निजुक्त करेंगे। ऐसा कोई भी प्राचीन मंदिर इनके समान नहीं है जिसकी इतनी सुख व्यवस्था सब अभी तक चलती आ रही है हजारों वर्ष। कितने वर्ष कितने युग के युग चले गए, शायद ब्रह्मा भी बदल गए, इसी ब्रह्मा के काल का ये नहीं है, न जाने कितने ब्रह्मा पराग, ये ब्रह्मा का भी पराग उससे पहले का, ये सब बहुत पुराना है। यहाँ पर बलदेव जी भी गए हैं, राम लक्ष्मण भरत जी भी गए हैं, इनसे सबका आकर्षण किया है। यहाँ पर कपिल देव जी भी गए हैं, यहाँ पर जितने भी भगवत अवतार भी हैं वो सिर्फ पिछल के वहां पर गए, इसलिए बहुत प्राचीन। इसके बाद में अब प्रति वर्ष इसी दिन में अब ठाकुर जी को मूल मंदिर से लेकर के वहां ले जाते हैं गुंडीचा वाले, और 9 दिन के बाद में फिर वहां से लौट आकर के ले आते। 1 दिन पहले वहां का मंदिर खोया जाता है गुंडीचा मंदिर वाला, और इसके बाद में कभी दूसरे दिन जाते हैं। महाप्रभु के समय में इसकी भावना एकदम महाप्रभु जी ने, बीच में ऐसा हुआ कि बौद्धों ने इसको दखल कर दिया और दखल करके इसको धर्म मतलब चार नाम उनके दिए, कुछ दिया हमको याद नहीं, उनका तीन मूर्ति बना दिया और लाल रंग से एकदम रंग दिया, जगन्नाथ जी के एकदम पोत करके, क्योंकि वो लोग मूर्ति छुट्टी कुछ नहीं मानते, इसलिए धर्म और क्या क्या याद नहीं, उन तीन चीजों का रूप में बदल दिया। और कौतुक तो की मूर्ति माने जाने लगी, धर्म को एकदम भ्रष्ट कर दिया। इसके बाद में फिर शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने धीरे धीरे बौद्धों को भगाया वहां से और भारतवर्ष से भी भगाया, और भगाने के बाद से फिर वो जगन्नाथ बलदेव भगाया। इसके बाद में आज 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु जी वहां पर, वहां का सब कुछ एकदम भाव में दूसरे रूप में बदल गया। क्रियाएं तो वही होती रही किंतु भाव सब कुछ अब प्रेम में भाव, चैतन्य महाप्रभु जी ने ये भाव लगाया और वहां पर स्थापित किया, क्योंकि उसी भाव में वो विभावित रहते। कृष्ण चले गए हैं वृंदावन को छोड़कर के मथुरा से द्वारका, गोपियां गिरह में या बाकी सब लोग गिरह में तड़प रहे हैं, वो लोग कृष्ण को सब समय लौटाने की चेष्टा कर रहे हैं और एक एक दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कृष्ण कब मधुपुरी या द्वारका से लौटेंगे। कुछ दिनों के बाद में सूर्य ग्रहण लगा और गोपियां सब नंद बाबा और यशोदा जी के साथ वहां पर गए और वहां पर कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद में जैसा श्रीमद् भागवत में लिखा है, गोपियों ने कृष्ण से प्रतिश्रुति कि हम तुम्हारे साथ में ब्रज में चलें। इसलिए गोपियों ने अपने मनोरथ पर चढ़ा करके और वहां से ले आए, लेकर के ये पुनः जैसा पहले जैसे ब्रज का भाव था वैसा ही होने लगा। कुछ दिन के बाद में कृष्णचंद्र जी समस्त ब्रजवासियों को लेकर के वो लोग ब्रज में चले गए और उनकी जो दूसरी मूर्ति थी उस रूप से वो द्वारका मूर्ति। अब यहाँ पर जगन्नाथपुरी को महाप्रभु जी ने मान लिया, जहाँ मंदिर है उसको मान लिया द्वारका, और जहाँ पर गुंडीचा मंदिर है उसको मान लिया वृंदावन। अब वो प्रति वर्ष महाप्रभु ये सोचते हैं कि कृष्ण को लाना है मथुरा से द्वारका से वृंदावन, इसलिए सब लोग भक्त लोग वहां से जगन्नाथ जी के रथ पर खींच करके यहाँ लाते हैं। जगन्नाथ जी बलदेव प्रभु और सुभद्रा के साथ में आते हैं, क्योंकि रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि जो लक्ष्मियां हैं कहीं वो लोग संदेह करती हैं यदि कृष्ण अकेले जाएंगे तो जरूर वृंदावन में चले जाएंगे और लौटेंगे नहीं। इसलिए कृष्ण ने बहाना किया, मैं स्नान किया मैंने और तुम लोगों ने सब 16,000 रानियों ने हमको इतना स्नान कराया कि हमको जुकाम सर्दी लग गई और थोड़े दिन के बाद में मुझे मेरा पेट भी पतला हो गया, अब मैं घर से निकल नहीं सकता। तो उन्होंने अनवसर में इतना दिन तक 15 दिन घर से निकले नहीं, अस्वस्थ पड़े हुए हैं। और वो दैता लोगों को पता लगाया और दैता लोग आकर के उनको पाचन हजमी क्या क्या उनको बना करके खिला रहे। अब कृष्ण थोड़े से जब ठीक हुए तो अपने लक्ष्मी ने जैसे कहा, मैं बीमार रहा इधर और मेरा मन नहीं लगता है, मैं थोड़ा सा अपनी बगीची की तरफ में जा करके जरा घूमा कहे अकेले हम भी साथ करें, नहीं तुम मत साथ, तुम रहने दो, तुम्हारा घर में बहुत काम होगा, बाल बच्चे हैं, इसलिए मुझको अकेले जाने। उन्होंने कहा ये जरूर कि मन में कुछ गड़बड़ी है, ये वृंदावन जाएगा जरूर, इसलिए मैंने सोचा अच्छा तो एक बात करो, मैं नहीं जाऊंगी किंतु बलदेव भैया को और सुभद्रा जी के बहन को लेते जाऊं। तो वो राजी हो गए, बलदेव जी को साथ लेकर के और सुभद्रा जी को साथ लेकर के रथ पर चढ़ करके वहां जाकर के सुंदराचल में जब पहुंचे तो उन्होंने यशोदा मैया के पास में इनको बैठा दिया, सुभद्रा जी को और बलदेव जी को, और अपने चले गए वृंदावन के नौ कुंजों में गोपियों के साथ में मिलने के लिए चले गए। और उनको याद ही नहीं रही ये आज गया कि कल गया कि परसों गया, पांच दिन उनके बीच गए। आप इनको चिंता की कहां गए, ये खोई खोई खोजने के लिए निकले और हाथ में लड़की आ ले गई, अस्त्र शस्त्र ले लिए, सोने के रथ पर चढ़ करके दुगदुगी बजाती हुई मशाल लेकर के उत्सव के साथ में परिकरों के साथ में ये वहां और देखा जाए रथ खड़ा है किंतु वो है नहीं। वृंदावन में पहुंच करके पहले रथ को तोड़ने का उद्योग किया, उसके ओने कोने और रथ को तोड़ने के लिए चक्के इत्यादि कुछ थोड़ा सा भाग तोड़। इसके बाद में देखे कि वृंदावन में कहाँ है, कुंजियों में खोजने लगे, खोज करके जो सामने आया उसको बांधा मारा पीटा। अंत में लोगों ने कहा जाकर कब तुम्हारे हम स्वामी को ला देंगे, तब फिर वहां से लौट पड़ते। इसके बाद में फिर नौवे दिन एकादशी को नकुल तिथि को वहां से ठाकुर जी फिर लौट वहां का लौट। ये तो हुआ साधारण भाव। महाप्रभु जी ने इसको इस प्रकार से लिया, गोपियां कृष्ण को लाने के लिए गई हैं और उनको मनोरथ पर चढ़ा करके ले आए। तेईस प्राण ना पाई हुई यहाँ लागी मदन दहन, मदन मने काम प्रेम, जिस प्रेम के वजह से हम गिरह में तड़प रहे हैं आज बहुत दिनों से, उस प्रभु को हमने आज पाया है और उनको लेकर के आ रहे। तो एक दिन पहले ये गुंडी क्या लीला जो आज हम लोग अभी करेंगे मंदिर इत्यादि का, वहाँ पर जगन्नाथ जी को लाना है, इसलिए वहाँ पर सब नौकर त्यागकर जाते थे और एक मुखिया नौकरों में एक मुखिया होता था वो सबको ले जाता था, दस बीस घड़े ले जाता था, झाड़ू ले जाता था, उनको महीना पैसे कुछ दिया जाता था और वहाँ झाड़ू ले करके साफ करके फिर चला था। महाप्रभु जी आज के दिन में काशी में इत्यादि से परामर्श किया ये महाराजा को कह करके ये सेवा हमको दी जाए, नौकर चाकर के द्वारा मंदिर बुलाया जाए और पूजा कराया जाए, ये चीज नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और स्वयं मंदिर में झाड़ू देना धोना साफ करना, साफ करके निर्मल करके फिर हम ठाकुर जी को खुद ले जाए। पहले हाथियों के द्वारा खेचवा करके ले जाते महाप्रभु ने, हम लोग सब खेच करके ले जाए। इसलिए महाप्रभु जी आज के दिन में गुंडीचा मंदिर में गए हैं साफ करने के लिए। महाप्रभु जी ने समस्त भक्तों को बुलाया और उनके हाथों में एक एक झाड़ू इसके हाथों में दिया, नित्यानंद प्रभु जी अद्वैत आचार्य जी रामानंद स्वरूप दामोदर परमानंद पुरी और जितने थे ना सब लोगों के हाथों में बड़े बड़े जो उन लोगों के हाथों में दिया और एक एक घड़ा दिया, घड़ा दे करके और झाड़ू दे करके और सब अपने हाथ से चंदन और ये ले करके सबके हाथ सिर पर दिया, चंदन लगाया और सबको माला पहनाई महाप्रभु अपने हाथ से। यह दे करके महाप्रभु के जितने भक्त थे आनंद में भर गए। आज तक ऐसी लीला कभी नहीं हुई थी जो महाप्रभु अपने भक्तों को चंदन और माला दे करके एक सेवा में, यही से महाप्रभु जी की लीला आरंभ हुई है। तो पहले लीला आरंभ क्या हुई, झाड़ू देना मंदिर में, मन मंदिर में झाड़ू देना है, वो मंदिर में तो झाड़ू देना सहज है। अभी हमने कहा है झाड़ू भी आ गया है, झाड़ू आ गया है, अब खटरी है मंदिर हम धोएंगे पोछेंगे और साफ करेंगे, किंतु मन मंदिर में झाड़ू लगाना ये बड़ा भारी कठिन है। क्रोध को उसमें से हटाना है, क्रोध के पत्थर बड़े बड़े हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये सब अपराध हैं, अनर्थ हैं, साधुओं की निंदा है, गुरु की अवज्ञा है और जो दर्शन नाम अपराध है और कितने प्रकार के ये सब अनर्थ है। प्रारंभ से अनर्थ से लेकर के उत्साह मई अनुसरला गुरु विकल्पा विषय संग्रह ये सब हटाना है, लय प्रमाण उठाना है, हटाना है। लय नहीं क्या, अभी यहाँ पर प्रलय जैसा हो रहा है, लय प्रलय कितने आदमी सो रहे हैं, ठंडी ठंडी बयार बह रही है और गर्मी तो है ही है, कितने आदमी आराम से देखते हैं यहाँ अभी भी सो रहे हैं, उठ नहीं पा रहे, देखिए कौन कौन सो रहे हैं। तो ये जो निद्रा देवी है भजन में प्रधान भागवत है, यदि वैष्णव की निंदा नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात, गुरु की अवज्ञा नहीं करते हैं और नामापराध नहीं करते हैं ये बहुत अच्छी बात, लोगों से झगड़ा नहीं करते हैं, क्रोध इत्यादि दूर हो गया। किंतु ये दूर होने पर भी यदि प्रवचन में हरि कथा में यदि सो गए तो सब सो गए, करना धारना कुछ नहीं होगा। इसलिए जहाँ तक हो सके दुकान पर साथ में नहीं सो जाता, क्यों नहीं सोता, पैसा भरा जब मैं आ रही है ना तो उसके बटोरने में बटोरने ना माने क्या, यदि सांप आ रहा है ना तो सांप को बटोरेंगे कि नहीं, सांप तो चौपन्न हो जाएंगे, नींद नहीं जाएगी। वैसे ये विषय आ रहा है उसमें हम लोग बड़े ध्यान से जगते हैं, किंतु यहाँ हर कथा आई कहाँ बस आंख बंद करके सो जाते हैं। तो इसलिए इन सब को भी लय प्रमाद इत्यादि को भी छोड़ना है। इसके अतिरिक्त और भी एक चीज है, भजन करने पर प्रतिष्ठा आ जाएगी, यदि थोड़ा सा लीला गला हुआ और जरा थोड़ा सा भाषण देने आ गया तब तो पूछो मत, रुपया पैसा प्रतिष्ठा सब चरणों में झुकने लग जाएगा, कहीं मैंने क्या था क्या हो गया, किसको मैं चीज हूँ, यह सभी हो जाएगा, उसमें भजन भी चौपट हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए, इसलिए और कभी कभी हो जाएगा भजन कर रहे हैं और कोई मर गया ना कोई बात जिसे आपने प्रार्थना किया, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु, किंतु वही हो गया तो भी भजन टूट जाता है। ये कृति उत्सव और कृति उत्सव भजन उत्सव ये जितने प्रकार के ये सब अनर्थ है, इन सबको छोड़ करके सचेत हो करके भगवान का भजन करना ही, ये झाड़ू देना है हृदय से, ये जितनी चीजें यहाँ का तो सुना, किंतु दो आदमी है ना दोनों में बनती नहीं, दो बहने हैं उनमें बनती नहीं, महीने हो गए वर्षों हो गए वह व्रत पर बोली चाली बंद है, ब्रह्मचारी का है ब्रह्मचारी के साथ में, एक बहन का दूसरी बहन के साथ में, गुरु बहने तो बहुत दूर की बात। तो तब फिर क्या हुआ, मंदिर साफ हुआ झाड़ू लगा कि नहीं लगा, ये सब दूर करना ही। यदि हम जैसे एक प्रकाश होता है ना प्रदीप, प्रदीप का नीचे क्या होता है अंधेरा होता है, क्यों अंधेरा होता है, जो जगत को प्रकाश कर रहा है उसी के नीचे अंधेरा, ये दिखला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सागर में हम प्रेम का पाठ जगत को पढ़ाते हैं और सुन रहे हैं प्रेम का पाठ, प्रेम करना चाहिए तो अपने गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से, अपनी बहन से, दूसरों से, इन्हीं से जब भी बात हुआ तो फिर क्या हुआ, ये प्रेम हमारे अंदर में नहीं आएगा तो फिर दूसरों को हम क्या शिक्षा दें, कहेंगे त्रिनाद अपनी याद करो, त्रिनाद अपनी सुने दरोर अपनी सही सुनना, याद हुआ हाँ याद हो गया, बोलो तो त्रिनाद अपनी सुने अमानी ना मानो देना, किस लिए झगड़ा, किस लिए होता है, ये चार चीजों के लिए झगड़ा, कोई किसी से कम नहीं बनना चाहता, मैं बुद्धिमान हूँ मैं बुद्धिमान, इसी के लिए तो झगड़ा होता है, या कोई चीज आ गई अच्छी चीज ये मैं इसका मालिक हूँ वो कहता है मैं इसका, मैं तुमसे बढ़कर के बुद्धिमान हूँ,
मैं तुमसे बढ़कर
कोई कम नहीं होना चाहता। ये प्रतिष्ठा है, ये सब मेरी है, तुम्हारी कुछ नहीं। किसी को प्रतिष्ठा इतना नहीं देना चाहता कोई, और सब प्रतिष्ठा अपने लिए। इन चार बातों के लिए ही लड़ाई, ये चार बातें ही खत्म हो जाए तो लड़ाई किस चीज का। मैं सबसे छोटा हूँ, छोटी हूँ। रामचंद्र जी कहते हैं सेनाओं में, ये देखो मैं सबसे छोटा हूँ, मैं पेड़ के नीचे बैठूंगा और तुम लोग कहाँ बैठेगा? ऊपर में तुम लोग बैठो, नीचे मत बैठो। वो पेड़ के ऊपर में बैठ रहे हैं और रामचंद्र जी कहाँ बैठ रहे हैं?
पेड़ के।
मुखिया ऐसा होना चाहिए, भजन करने वाला भी ऐसा होना चाहिए, दूसरों को सम्मान दे करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये झाड़ू देना है, ये झाड़ू देना हम आपके अभी हम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब समझा रहे हैं, समझ रहे हैं पूरी बात, किंतु ये काम करना है, झाड़ू देना है, ये देना है। इसलिए कैसे दिया जाए किसे? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं झाड़ूदार हूं। हम लोग झाड़ूदार नहीं है, बल्कि और सब गंदी चीजों को हृदय में रख करके और गंदा बनाने वाले। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी आज के दिन में, कल जगन्नाथ जी को लाना है, इसने मंदिर को साफ सुथरा रखना है। मंदिर माने ये मंदिर, ठाकुर जी को लाना है, कैसे साफ होगा? जब तक ये रहेगी बातें, प्रतिष्ठा कपट रमणी, जब तक ये प्रतिष्ठा हृदय में जब तक है, तब तक ठाकुर